समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 बज चुके हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के आज के अंक के साथ मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुज्तबा। हेलो सायरा।
हेलो जया, नमस्कार राधा, एंड अ वेरी वार्म वेलकम हु आर ट्यून्ड इनटू परिक्रमा इन दिस वेरी न्यू एपिसोड ऑफ परिक्रमा। और आज सावन का आखिरी सोमवार है जया, तो बहुत से लोग उसका बड़ा एहतमाम करते हैं। सो यस, हियर इज विशिंग एवरीवन अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स एंड गुड हेल्थ। एस्पेशली सावन के महीने के अपना एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस तो है ही, उसके अलावा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो लोगों को अपने हेल्थ का काफी ध्यान रखना तो चाहिए। वेल, ऑन दैट नोट वी बिगिन टुडेज शो, एंड वेल इन आवर लास्ट सेगमेंट टुडे जया, वी आर गोइंग टू रिमेंबर अ very very renowned acclaimed singer of predominantly hindi cinema, although unhone bengali mein bhi bahut se gaane gaaye hain aur unke vocal cords ki range ke bare mein to kya hi kehna. To hum log apne listeners ko kafi hint to de chuke hain, probably they'll definitely gauge who we are talking about, but more on that in our last segment. Let's start with the headlines first. Philippines President Ferdinand R. Marcos calls India a valued friend as he arrives on 5-day state visit to India this afternoon.
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं ने शोक व्यक्त किया.
Supreme Court wraps Congress leader Rahul Gandhi for his remarks on Indian army with regard to Galwan Valley clash, asking him to make statements in parliament instead of social media.
मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया।
And as always, Jaya, we start our show with this very important segment called Dateline India, in which we discuss some of the important topics or some developments that are happening at the national or international level. However, today we are going to talk about World Breastfeeding Week. World Breastfeeding Week is observed every year from 1st August to 7th of August. The day aims to raise awareness about breastfeeding and how it benefits the health of both the mother and the child. According to WHO, breastfeeding is an essential part of providing ideal food for the healthy growth and development of infants, and it also plays a vital role in preventing illnesses and diseases in both mother and baby.
जी सायरा, और विश्व स्तनपान सप्ताह मनाने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। इसका मुख्य उद्देश्य स्तनपान के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाना है, स्तनपान से संबंधित लोगों के बीच भ्रांतियों को दूर करना है। यह सप्ताह माताओं और परिवारों को स्तनपान के बारे में सही जानकारी प्रदान करता है ताकि वे दूध के विकल्पों जैसे फार्मूला मिल्क के भ्रामक विज्ञापनों से प्रभावित न हो। इसके अलावा यह स्वास्थ्य पेशेवरों को सही सलाह देने के लिए प्रोत्साहित करता है और सरकारों को ऐसी नीतियां बनाने के लिए प्रेरित करता है जो कामकाजी माताओं को स्तनपान जारी रखने में मदद करे, जैसे कि मैटरनिटी लीव और वर्कप्लेस पर स्तनपान के लिए सुरक्षित स्थान। इस सप्ताह के माध्यम से हम समाज में एक ऐसी सोच विकसित करना चाहते हैं जहां स्तनपान एक सामान्य और सम्मानित कार्य माना जाए।
Indeed, and even though the government is doing a lot of things, I think on the ground it's up to a lot of, a lot of things are up to the people also. For example, a lot of private employees should take note of this because they should create an environment in their office premises which is conducive to women, especially breastfeeding, lactating mothers. And Jaya, there was a time when breastfeeding in a public place was considered a stigma, but now we are seeing that many government and private offices are also having a separate space for mothers to feed their babies, which is a good thing. The Supreme Court has also issued a strong ruling stating that breastfeeding in public or at the workplace should not be viewed in a negative light. The court has also instructed that proper infrastructure facilities should be put in place for women to breastfeed their babies without any challenge. And very important here, Jaya, because we still see, even though laws kehte hain that, you know, workplaces may, you know, because a lot of women are working, so there should be basic facilities like a creche. If there are more than 200 employees, then of course you need to have a creche at your working place. That is very important, especially like, you know, in jobs like, jaise hum log hai media mein, for example, jinki bahut hi erratic shifts hoti hain, odd hours aate hain, so it's very important. Yes, so if those mothers are coming, one should know that, you know, the whole we just see the one aspect ki wo aake kaam kar rahi hai, but uske piche us aurat ki kya zindagi wo chhod ke aayi hai, nobody looks at that. So it's very important that employers take note of this. They become sensitive that they make the environment conducive to working mothers.
जी बिल्कुल. और इस वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह का थीम भी है कि स्तनपान को प्राथमिकता दें, स्थायी सहायता प्रणालियों का निर्माण करें. इस थीम के माध्यम से एक्चुअली यह बताने की कोशिश की जा रही है कि स्तनपान को सफल बनाने के लिए केवल व्यक्तिगत प्रयासों से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक माँ को सभी से सहायता और प्राथमिकता मिलनी चाहिए, चाहे वो उसका परिवार हो, स्वास्थ्य सेवा केंद्र हो, कार्यस्थल हो, या हमारा समुदाय, हमारा समाज ही क्यों ना हो. और प्राथमिकता देने का अर्थ है कि समाज के सभी स्तरों पर स्तनपान को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में देखा जाए. वहीं स्थायी सहायता प्रणालियों का निर्माण करना इस बात पर जोर देता है कि ऐसी प्रणालियां बनाई जाए जो केवल कुछ समय के लिए नहीं बल्कि हमेशा उपलब्ध रहे, ताकि हर माँ को जरूरत पड़ने पर सही समय पर मदद मिल सके.
That's right, Jaya. And जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड बहुत से स्टिग्माज हैं, सो ब्रेस्ट फीडिंग ना लेने से भी बहुत सारे स्टिग्माज हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, यू नो, ऑफकोर्स थ्रू आर प्रोग्राम, थ्रू दिस चैनल राइट नाउ, वी आर सेइंग दैट यू शुड डेफिनेटली ट्राई योर बेस्ट दैट यू, यू नो, ब्रेस्ट फीड द बेबी. बट देर आर सम मदर्स हु आर नेचुरली, दे डोंट प्रोड्यूस इनफ मिल्क, यू नो, दे डोंट लैक्टेट इनफ. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं खुद अपनी की बात करूँ, व्हेन आई वॉज अ बेबी, सो माई मदर वॉज नॉट लैक्टेटिंग इनफ, क्या Not even a single drop. But एक स्टिग्मा जब ये बना था कि नहीं, डब्बे का दूध तो बिल्कुल नहीं देना है, तो वो भी एक स्टिग्मा अलग तरह का होता है. सो आई वॉज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, एंड देन द गायनोकोलॉजिस्ट सेड दैट, आर यू प्लानिंग टू, यू नो, किल योर बेबी, गिव फॉर्मूला इफ यू आर नॉट लैक्टेटिंग. सो वो भी एक भ्रांति लोगों में होती है. तो दोनों तरह से अगर आप देखा जाए, इट्स नॉट दैट आई एम प्रोमोटिंग फॉर्मूला मिल्क, बट वन शुड नॉट ओनली बी वेरी एडमेंट और रिजिड अबाउट एनीथिंग. Nonetheless, we all know that mother's milk is the best nutritious diet for an infant, and not just for physical development but also for the healthy mental and emotional development. Because the bond create hota hai, you know, between a mother and a child while the mother is breastfeeding the child, I think that's just inexplicable.
जी सायरा, जैसा कि अभी आपने कहा कि स्तनपान न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि माताओं के लिए भी उतना ही जरूरी है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहता है कि स्तनपान माताओं और बच्चों दोनों के लिए बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है. स्तनपान को बढ़ावा देकर हर साल 8 लाख से अधिक जानें बचाई जा सकती है, क्योंकि अगर बच्चों को पर्याप्त मात्रा में माँ का दूध न मिले तो उनकी जान को खतरा होता है. विशेष रूप से 6 महीने से कम उम्र के बच्चों में यह देखा जाता है. और जैसा हमने कहा कि न सिर्फ बच्चों बल्कि माताओं के लिए भी स्तनपान कराना बेहद जरूरी है. स्तनपान कराने से माताओं को स्तन कैंसर, डिंब ग्रंथि के कैंसर, type 2 diabetes और हृदय रोगों के होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं. यह अनुमान लगाया गया है कि स्तनपान कराने से स्तन कैंसर के कारण हर साल होने वाली 20,000 माताओं की जानें बचाई जा सकती है.
However, we have seen that in recent times, especially in urban areas where a lot of women are working, breastfeeding has reduced. And while for many it's a matter of choice, but many are also helpless because, as we said, that in workplace, you know, the environment is not conducive to that. Growing urbanization, even changing lifestyle, and availability of formula milk, as we say, dried baby food, prepared baby food, and other baby foods are just, you know, at available at the click of the fingers now. So all these, they have contributed to the decline in breastfeeding, especially in the developed world. Formula milk, which is mainly for infants, has the highest share of the baby food market and is the biggest seller in the Asia Pacific region, which has more than 50% share of the global milk product market.
Bilkul. और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है. सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा हमने कार्यक्रम के शुरुआत में कहा कि आज सावन का आखिरी सोमवार है, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज सावन माह के आखिरी सोमवार के अवसर पर शाम 4 बजे से ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर की राजसी सवारी निकाली जा रही है। इसके साथ ही ओंकारेश्वर और मंदसौर के पशुपतिनाथ की सवारी भी निकाली जाएगी।
आस्था और भक्ति का सैलाब आज उज्जैन की सड़कों पर बाबा महाकाल के दर्शनों के लिए उमड़ रहा है। यहाँ भगवान महाकाल की चौथी सवारी आज निकाली जा रही है। महाकालेश्वर भगवान आज श्री चंद्रमौलेश्वर रूप में पालकी में, हाथी पर श्री मन महेश के रूप में, गरुड़ रथ पर श्री तांडव के रूप में और नंदी पर विराजमान होकर श्री उमा महेश स्वरूप में नगर का भ्रमण कर रहे हैं। प्राचीन काल से माना जाता है कि सवारी में अवंती का नाथ के रूप में बाबा महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए निकलते हैं। आज की सवारी की थीम मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन पर आधारित है। इनमें वन्य जीव, धार्मिक, ऐतिहासिक और ग्रामीण पर्यटन स्थलों को दर्शाती झांकियां सवारी में शामिल की गई हैं। इसके साथ ही जनजाति कलाकारों के दल भी अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में भगवान ओंकारेश्वर और ममलेश्वर की सवारी भी आज निकाली जा रही है। वहीं मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ की राजसी सवारी भी आज निकलेगी। प्रदेश के अन्य शिव मंदिरों में आज सावन के आखिरी सोमवार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सुबह से दर्शनों के लिए आ रही है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी मंदिरों में दर्शनों के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी समाचार भोपाल से मैं प्रशांत शर्मा।
एंड नाउ वी हेड टू द नॉर्थ ईस्ट टू कोहिमा। Well, India celebrates National Organ Donation Day on 3rd of August to commemorate the anniversary of India's first successful deceased donor heart transplant. This year, awards were presented to honor outstanding contributions in organ donation and transplantation across multiple categories. Manipur revived the best Northeast state and an award was given during the celebrations of the National Organ Donation Day that was held at New Delhi last Sunday. So let's hear more from our Imphal correspondent JJ Thokchom.
In spite of having a small state, Manipur have become forefront of organ donation and tissue transplantation among the Northeast states. The state has already adjusted as the best emerging state in the field. In recognition to the contribution made by Manipur, the West Northeast State Award on Organ Donation and Transplantation was handed over to the health official of the state by Union Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda on Sunday during the celebration of National Organ Donation Day held at New Delhi. Speaking about the importance of organ donation, Director of Manipur Health Department Dr. Chambo Golmay said that after death, human bodies either get decomposed or reduced to ash in accordance with rituals of the religion concerned. If one person donates organ or tissue while still alive or even after dead, it will help others, he said.
Then if you burn the body, everything will be turn into ashes. Let us try to continue doing our best, even in the coming days also and next year also. Let Manipur get the best award, both from living and deceased donor. And so I like to appeal to all to spread the news to all the people in our state.
India ranks third globally in organ transplantation, and last year the country performed nearly 18,900 transplants, which is the highest in a single year. However, there are numbers of patients who are unable to receive vital organs, and therefore there is a need to increase the number of donors. JJ Thoksom, Akashvani News Parikrama, Imphal.
नई शिक्षा नीति के अनुसार गुजरात सरकार ने तकनीक और नवाचार को एकीकृत करके स्कूलों में स्मार्ट शिक्षा को गति दी है। इसी के साथ सूरत नगर निगम माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 3D, ARVR, AI, रोबोटिक्स और ड्रोन तकनीक की स्मार्ट शिक्षा शुरू करने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट।
पहले चरण में सूरत के 18 सुमन स्कूलों की स्मार्ट कक्षाओं में छात्रों को एआई, ड्रोन और रोबोटिक्स तकनीक की शिक्षा मिल रही है। 12 एआई लैब में 11,000 से ज्यादा छात्र मुफ्त तकनीक की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 3D ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और एआई अब उनकी नियमित पढ़ाई का हिस्सा बन गए हैं। सुमन स्कूलों के कक्षा 9 और 10 के छात्र अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट और ड्रोन एविएशन के बारे में जानते हैं। सरकारी स्कूलों के ये छात्र ड्रोन उड़ाते हैं, रोबोटिक्स लैब में प्रैक्टिकल करते हैं और एआई जैसी उन्नत तकनीक सीखते हैं। सुमन हाईस्कूल नंबर 6 के आचार्य महेंद्र कुमार ने बताया कि इन स्कूलों में बच्चों को सप्ताह के हर दिन अलग अलग लेक्चर के माध्यम से एआई, डिजाइन थिंकिंग और स्टेम आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। इससे छात्रों को एआई तकनीक के माध्यम से उज्ज्वल करियर बनाने में काफी मदद मिलेगी। समाचार कक्ष से मैं मयूर सोलंकी, आकाशवाणी अहमदाबाद।
And Jaya, we all know ke saavan ka mahina to chal hi raha hai, and even though people who enjoy monsoons, but there are some people who actually are, you know, there's a lot of problem in some areas because of heavy rains, and we all know that North India, especially the hilly regions, they have faced a lot of havoc because of monsoons. And Met Department has issued an orange alert for very heavy rainfall in districts of Una, Hamirpur, Kangla, Mandi, and many more places. Similar alerts like orange and yellow will remain in place for several districts even till August 5. So let's hear more from our Shimla correspondent.
In view of heavy rainfall, all educational institutions in the Manali subdivision of Kullu district have been closed today. According to the latest report from the State Emergency Operations Center, landslides and continuous rain have disrupted traffic on 309 roads across the state. In Kullu district, National Highway 305 is blocked near Jhed Khanag. Since the onset of this monsoon season, 184 people have lost their lives in rain-related incidents across the state, while 36 people are still missing. Public infrastructure worth ₹1,714 crore has also been damaged so far. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं कि वहां की हलचल क्या है। तो सबसे पहले हम बता दें कि लंदन के ओवल में चल रहे भारत ने एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का पांचवा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच 6 रन से जीत लिया है। काफी रोमांचक रहा यह मैच।
Yes, indeed, a very thrilling.
मोमेंट पे ये लग रहा था कि पता नहीं हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। मैच के पांचवें दिन आज मेजबान इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 339 रन से आगे खेलना शुरू किया और उसके सारे बल्लेबाज 367 रन पर आउट हो गए। इंग्लैंड की ओर से दूसरी पारी में हैरी ब्रुक ने सर्वाधिक 111 रन बनाए, जबकि जो रूट ने 105 रन का स्कोर किया। भारत की दूसरी पारी में मोहम्मद सिराज सबसे सफल बल्लेबाज रहे, उन्होंने 5 विकेट लिए, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 विकेट हासिल किए और भारत ने यह श्रृंखला 2-2 से बराबर कर ली है।
And of course, it becomes even more a greater matter of pride when we beat England, especially on their home ground, because obviously, if you look at it, this game was only the English. We learned from them in the beginning. But now, we can say that we have
become their
guru.
That's
right. Another story from the world of sports. The first ever IPL-style T20 cricket championship for women began in Bengaluru today. Mysuru Warriors, Hubli Tigers, Kalyani Bengaluru Blasters, Mangaluru Dragons and Shivamoga Lioness will be vying for the T20 Maharani Trophy till 10th of August at M. Chinnaswamy Stadium.
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
We remember the nationalist leader Firoz Shah Mehta, who was born on August 4, 1845. In Mumbai.
Mehta entered the Lincoln's Inn in 1864 and qualified for the bar. After being called to the bar, he left for home in September 1868. While in England, he used to visit Dadabhai Naroji, and these visits were to remain as an important influence in moulding his liberal outlook. Besides Telang and Badruddin Tayabji, some of his close friends were Ranade, Gokhale, Dinshaw Vacha, Umesh Chandra Banerjee and Bal Mohan Bagle. Education absorbed his interests throughout his life. Firoz Shah Mehta saw in education the means by which India could modernize itself rapidly. He helped in the establishment of a Swadeshi bank, the Central Bank of India.
Firoz Shah Mehta is remembered mainly as the founder of the modern Bombay Municipal Corporation, which he fostered and served in a distinguished manner for nearly half a century. He was mainly responsible for the founding of an English newspaper, the Bombay Chronicle, which became an important agency for expressing Indian public opinion.
Along with Justice Tilang, he founded the Bombay Presidency Association in 1885 and served as its secretary. Firoz Shah Mehta was one of the founding members of the Indian National Congress. He presided over the Congress session held in Kolkata in 1890. In his presidential address, Firoz Shah Mehta said,
"All movements of the kind in which we are concerned pass through several phases as they run their course. The first is one of ridicule, that is followed by one of abuse, which is usually succeeded by partial concession, accompanied by warnings against taking big jumps into the unknown. The final stage of all is substantial adoption of the object of movement, with some expression of surprise that it was not adopted before. We have pretty well passed the first two stages. We have survived the ridicule, the abuse, and the misrepresentation."
We remember the martyr Ramakrishna Biswas. He was a member of Master Da Suryasen's group of revolutionaries. He was instructed by Master Da to assassinate the British Inspector General Craig. Accordingly, Ramakrishna, along with Kali Chakrabarti, went to Chandpur station on 1st December 1930. He shot dead Inspector Tarini Mukherjee, mistaking him as Craig.
Chased by the police, he was overpowered some 22 miles away from that place. Ramakrishna Biswas died on the gallows in the Alipur Central Jail on 2nd of March 1932.
4th August is also the death anniversary of Lal Singh. He was born in 1890 in Punjab. After being transported to the Andaman Islands, he established his business there. Lal Singh joined the Indian Independence League, raised funds for it, and donated the amount to Netaji during his visit to the islands. The Japanese forces arrested him in January 1944 on the false charge of spying for the British, and put him in the cellular jail. He was released later, but arrested again, and was thrown into the sea on 4th August 1945. We salute the brave son of the soil.
हम याद कर रहे हैं भारतीय रंगमंच के प्रसिद्ध निदेशक और नेशनल स्कूल ऑफ जामा के पूर्व निदेशक इब्राहिम अलकाजी को. आज उनकी पुण्यतिथि है. उन्हें उनके कार्यों के लिए पद्मभूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है. ऐसे तो अलकाजी ने कई ग्रीक ट्रेजेडी और शेक्सपियर की कृतियां लिखी हैं. इसके अलावा उन्होंने कुछ अन्य निर्देशकों के साथ मिलकर के हिंदी नाटक भी डायरेक्ट किए हैं, जिनमें से धर्मवीर भारती का अंधा युग भी है. आइए सुनते हैं इसका एक छोटा सा अंश.
युद्धोपरांत ये अंधा युग अवतरित हुआ, जिसमें स्थितियां मनोवृत्तियां आत्माएं सब विकृत हैं. है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, पर वो भी उलझी है दोनों ही पक्षों में. सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का. वो है भविष्य का रक्षक, वो है अनासक्त, पर शेष अधिकतर हैं अंधे, पथभ्रष्ट, आत्महारा, विगलित, अपने अंतर की अंध गुफाओं के वासी. ये कथा उन्हीं अंधों की है.
Today is also Wajahat Hussain Mirza's death anniversary, a very accomplished screenwriter and film director who penned very memorable dialogues of some of the most successful films in India, namely Mughal-e-Azam and the Academy Award nominee Mother India. So why not listen to a dialogue, this very memorable dialogue from Mughal-e-Azam.
Ye badnaseeb baap se duniya shehnshah kehti apne roothe hue bete ko manane aaya hai, usse mohabbat mangne aaya hai.
Bete ki mohabbat barbaad karke mohabbat chahte hain. शहनशाह बाप का भेस बदल कर आया.
शहनशाह रोया नहीं करते शेखू, बाप की आंखों में आंसू है शेखू. ये गरीब बाप शहनशाह अकबर के उसूलों से मजबूर है.
और सलीम अपनी मोहब्बत से.
शेखू मोहब्बत दिलों को फर्क कर सकती है, फौजों को नहीं.
और सायरा, संगीत और अभिनय की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो सदाबहार और हमेशा के लिए अमर है. वो नाम है किशोर कुमार का, जिसका जिक्र हम कार्यक्रम के शुरुआत में भी कर रहे थे। दिग्गज सिंगर किशोर दा की आज 96वीं बर्थ एनिवर्सरी है। किशोर कुमार का असली नाम आभास कुमार गांगुली था। पार्श्व गायन यानी बैकग्राउंड सिंगिंग के लिए उन्हें 8 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किशोर कुमार ने 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और 10 से अधिक फिल्मों का निर्देशन भी दिया। ऐसे तो उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए हैं, लेकिन अभी इसे सुनते हैं।
मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए।
And yes, widely regarded as one of the greatest, most influential and dynamic singers of the in the history of modern Indian music, Kishore Kumar was one of the most popular singers in the Indian subcontinent. Notable for his yodeling and ability to sing songs in different voices. In fact, कहा जाता है जब वो छोटे थे तो जिससे मछली काटी जाती है ना, वो जो हंसी टाइप की होती है, that sickle, तो वो दौड़ते हुए कहीं से खेलते हुए आ रहे थे, and he stumbled on that and he actually cut his toe very badly. So he was in pain for a lot of months, जिसकी वजह से वो दिन रात बस चीखते रहते थे. So उसकी वजह से उनके कह सकते हैं गले के जितने तार थे वो इतने खुल गए हमेशा के लिए, and that's why his range was such magnanimous, you can say. And singing, used to singing in different genres. Some of his rare compositions considered classics, they were however lost in time. But what is not lost in time is his very very classic music. Aur khali romantic nahi, unhone kuch sad songs bhi bade hi dard bhare gaaye hain.
Bilkul bilkul, 1957 mein bani Fantoos mein dukhi man mere geet ko ga kar unhone apni aisi dhaak jamai ki jaane maane sangeetkaron ko Kishore Kumar ki pratibha ka loha manna pada tha.
दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। दुखी मन मेरे
और आज भी उनकी सुनहरी आवाज लाखों संगीत दीवानों के दिल में बसी हुई है। उन्होंने न सिर्फ हिंदी में बल्कि कई रीजनल्स में भी गाए हैं, रीजनल्स लैंग्वेजेस में भी गाना गाए हैं। आइए सुनते हैं उनका ये बंगाली गाना।
नाम अमर किशोर कुमार गांगुली, রবি ঠাকুর যে ভাষাতে বলতো কথা তাই বলি, রবি ঠাকুর যে ভাষাতে বলতো কথা তাই বলি, নাম আমার কিশোর কুমার গাঙ্গুলি।
And Jaya, music director S.D. Burman, is credited with spotting Kumar's talent for singing. And it was during the making of Mashal in 1950 that he visited Ashok's house, where he heard Kumar imitating K.L. Sehgal. He then complimented him and told him that he should develop a style of his own. And the rest is of course history. Aur chahe wo jitni sare gaane ho, chahe you know Muneem Ji, Taxi Driver, House Number 44, Fantoosh, 9-2-11, Paying Guest, Chalti Ka Naam Gaadi, and many many more. So why not, let's listen to a beautiful medley of his songs.
Bilkul.
मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। तुम आ गए हो नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लो जा रही।
ऐसे गाने के दिल ही नहीं चाहता है कि रुके, इज़ इट। Well, that was Kishore Kumar, and today is also a very accomplished director, playback singer, music composer's birthday. Yes, we're talking about Vishal Bhardwaj. He's known for his work mainly in Hindi cinema and recipient of 9 National Film Awards and Filmfare Award. So why not listen to this beautiful song from the film Omkara?
ਨੈਣੋ ਕੀਮਤ ਮਾਣਿਓ ਰੇ ਨੈਣੋ ਕੀਮਤ ਸੁਣਿਓ ਨੈਣੋ ਕੀਮਤ ਸੁਣਿਓ ਰੇ ਨੈਣਾ ਠੱਗ ਲੈ।
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए जया और सायरा को आज का कार्यक्रम यही समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in। साथ ही आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं। नमस्कार।